ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भूमिज्ञाद्विरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामैहं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधावदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सकृजातं सगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणालिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्तदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगाभक्तिदा श्रीगौराकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्देष्टासज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौमः श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणासिन्धौ दीनबन्धौ जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। जयतां सुरतोर्भङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाश्रीलगोविन्ददेवौ प्रष्ट्रालिविसेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि तटतटस्थितः कर्षं वेणोस्वनेर्गोपीर्गोपिनाथः श्रियस्तु नः। सप्तकाञ्चनगौराङ्गि राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶುಕ್ಲಾಂ ವರದನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ ಯಸ್ಯ ದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾದಃ ಪಾರಿಷತ್ಯಾತ್ ಪರಸತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಣಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ವಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾವನಚಾರಿಣಃ ಶೃಣ್ವನ್ ರಾಮಕಥಾನಾಥಂ ಪೂನಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ ಯಾ ಪಿಬನ್ ಸತತಂ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತಸಾಗರಂ ಅತೃಪ್ತಸ್ತಂ ವನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಮಷಂ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಅಸಗೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಮಹಾಮಾನಾರಕ್ತಂ ವಂದೇ ಅನಿನಾತ್ಮಜಂ ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನಂ ಕಪೀಶಮಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾಭಯಂಕರಂ ಉಲ್ಲಂಗಸಿಂಧೋ ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ ಯಶೋಕವನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಃ ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ ಲಂಕಾಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಲಾಂಜನೇಯಂ ಆಂಜನೇಯಮದಿತ್ಪಾಟಲಾಲನಂ ಕಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನವತರಕಕ್ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಪಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂತಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಯಃ ಕರ್ಣಾಂಜಲೇ ಸಮುಪತೈರಹರಃ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಿಬತ್ಯಾದರಾತ್ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ವದನಾರವಿಂದಕಲಿತಂ ರಾಮಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಮಧು ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾವಿತಪ್ಪಿಪತ್ತಿಮರಣಾತ್ ಅತ್ಯೈತ ಸ್ವಪದ್ರುಹಂ ಸಂಸಾರ ಸವಿಹಾಯ ಗಚ್ಚತಿ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣೋರ್ಪದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗಂ ಸಮಮಧುರೋಪನತಾರ್ಥವಾಕ್ಯಬದ್ಧಂ ರಘುವರಚರಿತಂ ಮುನಿಪ್ರಣೀತಂ ದಶಶಿರಶ್ಚವದಂ ನಿಶಾಮಯುಧ್ಯಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿರಿ ಸಂಭೂತ ರಾಮಾಯಣ ರಾಮಸಾಗರಗಾಮಿನಿ ಪುನಾದುಭುವನತ್ಪುಣ್ಯಂ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದಿ ಶ್ಲೋಕಸಂಜಾಕುಲಾಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಸಕಲ್ಲೋಲಸಂಕುಲಂ ಕಾಂಡಗ್ರಾಹಮನಾಮೀನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವಂ ವೇದವೇದ್ಯೇ ವರೇ ವಂಸಿ ಜಾತೇ ದಶರಥಾತ್ಮಜೇ ವೇದೇ ಪ್ರಾತೇ ಸತೇ ಆಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ವೈದೇಹಿ ಸಮಿತಂ ಸಮುದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇ ವಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯೇ ಪರಂ ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿ ಪ್ರವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವಾಮೇ ಭೂಷಿತ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತ ಸುತೃಪ್ನೋ ಪಾರ್ಶ್ವದಳಯೋರ್ ವ್ಯಾಧೀಷು ಕೋಣೇಷು ಚ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ಯುವರಾತ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀಲ ಸರೋಜ ಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಮೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರಿಯಾನಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕಮರುದ್ರಣೇಭ್ಯಃ ಅಸ್ತ್ರಿ ವಿಜಯತಾಂ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ ರಾಜಾಜೇತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣ ವಿಪಾಲಿತಃ ತಾಸೋಹಂ ಕೌಶಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರುಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹಂತ ಮರುತಾತ್ಮಜ ನ ರಾವಣಂ ಸಹಸ್ರಮ್ಯೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಫಲಂ ಜಯ ಭವೇತ್ ಶಿಲಾಭೇತು ಪ್ರಹಸ್ತತ್ತ ಪಾದಪೈ ಚ ಸಹಸ್ರಃ ಅರ್ಥಯಿತ್ವಾ ಪುರೀಂ ಲಂಕಾನ್ ಅವಿವಾದಯತ ಮೈಥಿಲೀಂ ಸಮೃದ್ಧರ್ಥೋ ಗಮಯಿಷ್ಯಾಮಿ ನಿಷ್ಠಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯತಂಜಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಶರೀತಿ ಪೌರುಷೇ ಚ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವೇದೇದಂ ಜೈ ರಾಮಣೀಂ ಆಪದಾಮಹತರ್ಥಾರಂ ನಾದಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ವೀ ವಾಂಗ್ವಿದಾಂಬರಂ ನಾರದಂ ಪರಿಪ್ರಪ್ರಚ್ಛ వాల్మీకిం నిపుంగవం రామాయ నమః. కలం రామాయణ కి చర్చ మే సబ్సే పేలా చర్చ కియతే భగవాన్ రామచంద్ర ఔర్ కృష్ణ ఇన్ దోనో మే అంతర్ క్యా హై, హస్తిత్వ మే అంతర్ తో హై నీ, దోనో పరమ పురుష హై, లేకిన్ ఫిర్ భీ భగవాన్ శ్రీకృష్ణ ప్రకట్ హుయే, ఉన్నోనే దిఖాయా సారా జగత్ కో మే భగవాన్ హూ. జబ్ వహీ భగవాన్ ప్రకట్ హుయే రామచంద్ర కి రూప్ మే, ఉన్నోనే దిఖాయా కి మే ఏక్ మనుష్య హూ. పురే మనుష్య కే రూప్ మే ప్రకట్ హోకే మనుష్య కో కేసే జీనా చాయే ఉస్కో సిఖాయా. ఏకీ అనేకో అనేకో జీవన కే పహలూ హోతే హై, లేకిన్ ఉన్ సబ్ కా ఆధార్ హోతా హై సంబంధ, ఔర్ ఉస్ సంబంధ కే అనుసార్ హమ్కో కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, యే సబ్సే మహత్వపూర్ణ శిక్షా హై. అగర్ ఉస్కో ఏక్ వ్యక్తి కో మనుష్య కో గణిత నీ ఆయే, విజ్ఞాన్ నీ ఆయే, కోయి కళా నహీ హై, తో భీ చలేగా, లేకిన్ అగర్ ఉస్కో వ్యవహార్ నీ మాలూమ్ హై తో వో జానవర్ కే బరాబర్ హై. వ్యవహార్ హోతా హై సంబంధో కే ఉపర్ ఆధారిత హోకే. ఆజకల్ సమాజ్ మే కిసీ చీజ్ కీ కమీ నహీ హై, వ్యవహార్ కీ కమీ హై. ఏక్ ఏక్ ప్రకార్ కే సంబంధ కే అనుసార్ జిస్ ప్రకార్ కా వ్యవహార్ హోనా చాయే వో లోగ్ భూల్ రహే హై. బేటీ కో MBA కరాయా లేకిన్ మా కో కేసే ఆదర్ దేనా చాయే వో నహీ మాలూమ్ బేటీ కో. బేటే కో ఇంజనీర్ బనాయా లేకిన్ వో భాయి కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, బడే భాయి కే సాథ్, వో నహీ మాలూమ్. హమారే ఘర్ మే బహు ఆయి జో డాక్టర్ హై లేకిన్ ఫిర్ భీ ఉన్కో కేసే సాస్ ససుర్ కో ఆదర్ కర్నా చాయే వో నహీ మాలూమ్. క్యా ఫాయిదా ఉస్ ప్రకార్ కి డిగ్రీయోన్ కా. సబ్సే మహత్వపూర్ణ హై స సంబంధ, సంబంధ కే అనుసార్ జో వ్యవహార్ హోతా హై ఉస్ చీజ్ కో సిఖానే కే లియే భగవాన్ రామచంద్ర ప్రకట్ హుయే. సబ్సే పహలా రామచంద్ర నే దిఖాయా కి మాతా పితా కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, చాయే వో కైకేయి జైసా మాతా క్యో నా హో ఉస్కో ఉస్కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, ఏక్ భాయి కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, ఏక్ పితా కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, ఏక్ మిత్ర కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, ఏక్ దుష్మన్ కే సాథ్ భీ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే. దేఖి రావణ్ దుష్మన్, ఉన్కా మృత్యు నికట్ హై, అగ్లే దిన్ మృత్యు హోనే వాలే, రామ్ నే ఖబర్ భేజా, దేఖో అభీ భీ సమయ్ హై, ఖాళీ తుమ్ సీతా కో వాపస్ దే దో, మే తుమ్కో రాజా బనాఊంగా. తబ్ కిస్నే ప్రశ్న పూచా రామ్ సే, ఆప్ ఇస్ ప్రకార్ కా ప్రస్తావ్ రఖ రహే హో, లేకిన్ ఆప్నే తో రామ్ యే జో లంకా కో విభీషణ్ కో పహలే దే చుకే హో, క్యోంకి జైసే విభీషణ్ శరణాగత్ హుయే తురంత్ రామ్ నే కహా కి విభీషణ్ జో హై లంకా కా రాజా హై, హే లంకేష్ కర్కే సంబోధిత కియా. అగర్ రామ్ నే అభీ సీతా కో వాపస్ కియా తో రామ్ సే పూచా గయా తా, రావణ్ కో క్యా కరోగే, రావణ్ కో రాజా బనాఓగే, కిస్కా రాజా బనాఓగే, రామ్ నే కహా అయోధ్య కా రాజా బనాఊంగా. దుష్మన్ కే సాథ్ కేసే వ్యవహార్ కర్నా చాయే, వో సబ్ చుడియే ఏక్ పక్షి కే సాథ్ కేసే, అగర్ వ్యవహార్ సీఖనా హై కేసే కిస్ వ్యక్తి సే కేసే బాత్ కర్నా చాయే, కిస్ ప్రకార్ వ్యవహార్ కర్నా చాయే, మిత్రతా కేసే బనాకే రఖనా చాయే, ఏక్ పతి కో కేసే రహనా చాయే, ఏక్ ప్రజా కో కేసే రహనా చాయే, ఇత్నా హద్ తక్ కి ప్రజా జైసే కేసే రహనా చాయే ఉస్కా భీ శిక్షా దేతే రామ్. జబ్ భరత్ జీ ఆ రహే హై, ఇధర్ లక్ష్మణ్ తాండవ్ నృత్య కర్తా రహే, భరత్ కో ఐసా కర్ దూంగా వైసా కర్ దూంగా, రామ్ శాంతి సే బైఠే హై. తబ్ లక్ష్మణ్ కో శాంత్ కర్తే రామ్ నే కహా, దేఖో అభీ హమారే రాజా ఆ రహే హై, ఉన్కా స్వాగత్ కి తయారీ కరో. ఏక్ ప్రజా కే రూప్ మే జిస్ ప్రకార్ ఏక్ రాజా కో స్వాగత్ కియా జాతా ఉస్ ప్రకార్ కి తయారీ కర్నే కే లక్ష్మణ్ కో కహతే. లక్ష్మణ్ ఔర్ క్రోధిత్ హో గయే, యే తో బడా సుందర్ ప్రసంగ్ హై, ఉస్కే విషయ మే బాద్ మే చర్చా కరేంగే, లేకిన్ బాత్ యే హై కి భగవాన్ రామచంద్ర ఆకే దిఖాయే కి మనుష్య కే కైసే జీనా చాయే. తో పహలా యే బాత్ చర్చా కియా కల్, దూసరీ బాత్ రామాయణ కే విషయ మే చర్చా కియా, రామాయణ వేద హై, జబ్ స్వయం భగవాన్ ప్రకట్ హుయే రామచంద్ర కే రూప్ మే, వహీ వేద రామాయణ కే రూప్ మే ప్రకట్ హువా, వహీ వేదో మే జో శిక్షా దీ గయి వహీ శిక్షా రామాయణ మే ప్రాప్త హోతా హై. తో రామాయణ ఔర్ వేద కే బీచ్ అంతర్ క్యా హై, అగర్ వేద హై తో అంతర్ యహీ హై, వహీ వేదో కీ శిక్షా ఏక్ కావ్య కే రూప్ మే ప్రస్తుత కియా గయా హై. काव्य मतलब क्या है हम आपको चर्चा किया था। वेदों में जब इंस्ट्रक्शंस आदेश होते हैं वो एक मालिक नौकर को देता है, उस प्रकार के आदेश के रूप में रहता है। पुराणों में एक मित्र एक दूसरे मित्र को जिस प्रकार वर्णन संबोधित करता है, व्यवहार करता है, उस प्रकार रहता है, थोड़ा सा मधुर रहता है। लेकिन एक प्रिया अपनी प्रियतमा से किस प्रकार व्यवहार करती है, इस प्रकार बात करती है, उतना मधुर तरीके से बात करती है, उसी प्रकार इधर वही वेदों को वाल्मीकि ने काव्य रूप प्रस्तुत किया। इसलिए हम अभी वाल्मीकि के प्रणाम मंत्र को उच्चारण किए थे। वाल्मीकि के प्रणाम मंत्र को उच्चारण करते हुए आपको दिया गया श्लोकों में से कूजंतम राम रामे की मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाकम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि को कोकिल के रूप में संबोधित किया गया है। कौन कोकिल, क्या करते कोकिल? आरुह्य कविता शाकम, बहुत अद्भुत शब्द है आरुह्य कविता शाकम। अनेकों अनेकों साहित्य अगर वृक्ष के रूप में तुलना किया जाए, उसका एक कविता का जो शाखा है उसके ऊपर बैठ के वाल्मीकि ने क्या किया, कोकिल जैसा कूजंतम राम रामेति, राम राम करते ये रामायण रचना किया, मधुरम मधुराक्षरम। राम शब्द के अंदर जो मधुरता है उसका वर्णन करते हुए एक मंत्र शास्त्र में भी इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले राम शब्द का अर्थ क्या है? राम वो है जो लोगों को आनंद प्रदान करते हैं। योगिनो मतेनते सत्यान चेदात्मनि इति राम पदे नासु ब्रह्म परम ब्रह्म इत्यभिधीयते, पुराण का श्लोक है। पुराणों में इसका वर्णन हुआ है कि रमयति इति रामः, जो लोगों को आनंद देते हैं उनको राम कहा गया है। मन को रमते हैं, रमति रमयति इति रामः। ठीक विपरीत दूसरा है, रावण कौन है? रावयति इति रावणः, जो रुलाता है उसको रावण कहा जाता है, जो आनंद देता है वो राम है। अभी मंत्र शास्त्र के अनुसार भी राम ये दो शब्द में रा और रा, रमा। रा ये अग्नि सूचक है। मंत्र शास्त्र कुछ अलग होता है, वो विशेष शास्त्र है तंत्र और मंत्र शास्त्र। ये तंत्र और मंत्र शास्त्र के अनुसार ये रा बीजाक्षर, ये कोई भी शब्द ये रा बीज से बनता है वो अग्नि को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है, वो मारने वाला या जलाने वाला है। मां क्या है? अमृतत्व को प्रदान करने वाला, अमृत को बरसाने वाला। तो भगवान रामचंद्र या राम, इसलिए कि राम शब्द इस्तेमाल करने से हमारे हृदय में कल्मश नाश होता है और अमृत का बारिश हमारे हृदय के ऊपर होता है, ये राम है। तो इधर वाल्मीकि की जब रामायण को रचना की, कविता के रूप में रचना की, और कविता के रूप में रचना करते करते देखिए दूसरा श्लोक में वाल्मीकि के विषय में क्या कहा गया है। वाल्मीकि मुनिसिंहस्या, मुनिसिंहस्या, पहले श्लोक में उनको वर्णन किया गया कोकिल और तुरंत सिंह। ये कहां से भाई, ये ऐसा कोई कैसा कैसे वर्णन हो गया? ये रामायण का विशेषता है। बाहर से कविता के रूप में एक बहुत सुंदर एक एक स्टोरी है, एक एक कहानी है, एक इतिहास है, कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया, बहुत मधुर है साहित्य के रूप में। लेकिन अंदर क्या छुपा हुआ है? वेदांत के कठोर सत्य छुपा हुआ है। इसलिए रामायण जो है वो साहित्य शास्त्र से लेके वेदांत शास्त्र तक प्रत्येक प्रकार के शास्त्रों को सूचित करने वाला है। उसके अंदर धर्म शास्त्र प्राप्त होता है, न्याय शास्त्र प्राप्त होता है, और उसके अंदर वेदांत शास्त्र प्राप्त होता है। तो पूर्ण तरीके से दिखा जाए भक्ति का ग्रंथ है। इसलिए रामायण पढ़ ले और कोई ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। तो अभी कल हम इन रामायण के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि रामायण अस्तित्व में वेद है। तो बाद में हमने कल चर्चा किया किस प्रकार रामायण का सबसे पहला प्रेजेंटेशन कहाँ हुआ था, रामायण को गाया जाता है। सबसे पहला रामायण को कहाँ गाया गया था? रामचंद्र के सामने गाया गया था। सबसे पहला रामचंद्र ने रामायण के चार श्लोकों को सुना, जो बालकांड के आखिरी के चार श्लोक माने जाते हैं, जहाँ सीता राम का विवाह हुआ, जाके अयोध्या में बहुत सुखी से जी रहे हैं। प्रिया तो सीता रामस्य धारा, ये जो इस श्लोक से प्रारंभ होने वाले श्लोकों को भगवान रामचंद्र ने सुना जब लव कुश ने अश्रु को बंदी बना लिया था। उस समय जब रामचंद्र आए तो पूछा कि रामायण जानते हो, बताओ। अभी ये लव कुश रामायण सुनाने लगे, रामायण का वो भाग सुनाने लगे जहां सीता और राम के बीच में प्रेम का संबंध है, किस प्रकार राम जी सीता को देख के उनके हृदय में इतना प्रेम प्रकट हो रहा है सीता के प्रति, उनके गुणों को देख के, रूप गुणात रूप गुणों को देख के, और दूसरी ओर द्विगुणात सीता के हृदय में भगवान रामचंद्र जी इतना द्विगुण प्रेम है, हृदय हृदय उन दोनों के बीच में हृदय का धड़कन मात्र से एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते थे, दूसरों को देखने की भी आवश्यकता नहीं थी, इन दोनों के बीच में अगाढ़ प्रेम। और बाद में उन्होंने कहा कि तीसरे श्लोक इधर जो आपको वर्णन किया गया इधर लिख दिया है इसमें कि तस्यभू विशेषेण मैत्री जनकात्मजा देवता भी समरूपो सीता श्री इव रूपिण। कौन है सीता? श्री इव रूपिण, साक्षात लक्ष्मी जी से है सीता, लक्ष्मी जी से दिखाई पड़ रही सीता, और देवता भी समरूपो, उनके सामने देवता लोग भी कुछ नहीं, बड़े बड़े देवता लोग भी सीता को दर्शन करने के लिए आते, इतना सुंदरी सीता, इतना अद्भुत ऐश्वर्यवान सीता है। और आगे वर्णन करते हैं कि इस सीता को भाजू रहते हुए राम के पास में रहते हुए राम कैसे सुशोभित हो रहे, विष्णु रिवा, विष्णु जैसा, यानी सीता होने की वजह से राम की शोभा बढ़ रही है। सार रूप में लव कुश ने इन बात को राम को सुनाया, जैसे राम ने इन बातों को सुना, अभी लव कुश को उत्तरकांड नहीं मालूम राम का, रामायण का, राम ने सीता को भेज दिया वो सब चीजें नहीं मालूम, राम को सीता का प्रेम और सीता का विरह का अनुभूति हुआ, उस विरह को सहन नहीं करते हुए राम बेहोश हो गए। रामायण की शक्ति है इसके अंदर, राम को बेहोश करने वाली ताकत इसके इस रामायण में है। कल हमने भी चर्चा किया किस प्रकार भगवान रामचंद्र जब बेहोश हुए तो उधर कुछ आचार्य ने कहा रामायण के ये तीन श्लोक काफी है जहां सीता की वजह से राम की शोभा बढ़ रही है, ये बात सुनने मात्र से ये ऐसी वाक ये वा ये जो ऐसा वाक गीर बाण है, मतलब वाक की वाणी की बाण बाण है जिसके द्वारा राम हार गए, क्योंकि अगर अश्व को बांध के रखते अश्वमेध यज्ञ में वो राजा को युद्ध करना पड़ता है, उस युद्ध में ही लव कुश ने ये कुछ वाक्यों के द्वारा राम को हरा दिया। एक बात क्या है कि राम की शोभा सीता से बढ़ रही है और उसी शोभा देने वाली सीता को भगा दिया रामचंद्र, ये बात लव कुश ने नहीं बोला लेकिन राम स्मरण करते हुए खुश। तो बाद में सब अयोध्या वापस गए, इधर अयोध्या में जब लव कुश को बुला के रामायण का गान हो रहा था, बड़ा पंडाल बांधा गया था, और राम की परिस्थिति कैसे थी, क्या हुआ, मभूषया, ऐसे घिसते 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 चले गए, नीचे चले गए, और सभी लोग मुग्ध हो गए रामायण को सुनते हुए। लव कुश इतना अद्भुत तरीके से गा रहे किसी का होश नहीं है। और कुछ समय के बाद देखिए रामचंद्र सिंहासन में नहीं है, कहां है रामचंद्र, सब प्रजा के बीच में लड़के ऐसा देख रहे हैं, आसक्त मना मभूषया, कैसे देख रहे थे, यही मेरी जीवन है। वैसे राम का जीवन नहीं बता रहे लेकिन फिर भी रामायण उस समय लोगों का जीवन बन गया था, राम का भी जीवन बन गया था, इसलिए ये रामचंद्र ने कैसे सुना, आसक्त मना, स्वयं भगवान रामचंद्र अपनी कथा के प्रति आसक्त रहते उसको वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। और हमने ये भी बताया कि किस प्रकार वाल्मीकि ने लव कुश को रामायण क्यों सुनाया, उसके विषय में कहा कि काव्यम रामायणम कृतम सीताया चरितम, ये सीता जी का चरित्र है, राम का चरित्र नहीं है बल्कि पौलस्त्य का वध का चरित्र नहीं है बल्कि सीताया चरित्र महत् स्वयं वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रामायण जो है वो सीता का चरित्र है, और साथ साथ में क्या है, वेदोपब्रह्मार्थाया, वेदों का अर्थ को साधारण प्रजा को पहुंचाने के लिए ये रामायण को लिखा गया था। हम इस बात को कल चर्चा किए थे और चर्चा करने के समय हमने लास्ट में आखिरी में इस बात को कहा था कि चार पुत्र दशरथ को प्राप्त हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हम इन चार पुत्रों का जो जन्म है उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करें। कल आपको थोड़ा सा परिचय दिया था, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका जन्म बड़ा अद्भुत तरीके से हुआ। बालकांड की शुरुआत हो रहा है, बालकांड जो है यज्ञ प्रधान कांड है। यज्ञ प्रधान कांड मतलब क्या है? हर जगह यज्ञ प्राप्त होता है, भगवान प्रकट हुए यज्ञ से, विश्वामित्र का यज्ञ को रक्षा किया और अंततः यज्ञ में सीता को स्वीकार किया, यानी विवाह हुआ। तीन यज्ञ है। इससे पता लगता है कि भगवान का प्राकट्य भी यज्ञ से होता है। भगवान जो है वो यज्ञ को संरक्षण करते हैं और अंततः यज्ञ के रूप में जीवों को अपना मानते हुए स्वीकार कर लेते हैं। अब देखिए अनेकों को यज्ञ में हम क्या आहुति के रूप में चढ़ाते हैं, क्या घी चढ़ाते हैं, स्वाहा स्वाहा। वास्तविक ये स्वाहा स्वाहा करने का मूल उद्देश्य क्या है कि अंततः हमारी चेतना जो है, हम हमारे पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में स्वाहा हो जाए। तो एक जगह एक आचार्य ने वर्णन किया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि आसु। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पूरा अपना अस्तित्व, अपना जीवन को भगवान को समर्पित करना, इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है? ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, वो जीवन पूरा समर्पित कर देते हैं। तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक गृहस्थ ने पूछा, वैसे देखा जाए कर्म संन्यास जो लिए होते हैं उनको यज्ञ नहीं करने का अधिकार होता है, यज्ञ नहीं कर सकते। तो किसी ने पूछा कि यज्ञ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पूरा अपने आप को समर्पित कर दिया, यानी वो यज्ञ की आहुति में अब खुद गया, तो और क्या बचा है, कैसे करेंगे बताओ, नहीं हो पाएगा। तो संपूर्ण रूप में भगवान को समर्पित करना यही यज्ञ है। जीव को अंततः भगवान को समर्पित करना है। हमने कल चर्चा किया, सीता साक्षात लक्ष्मी हैं, लेकिन एक जीव का रूप में प्रकट हुई, या कि जीव को कैसे जीना चाहिए उसका वर्णन किया। सारे उपनिषद के जो वाक्य हैं उन सबको स्पष्टीकरण सीता जी ने किया जन्म से ही। हमारा शरीर क्षेत्र है, पृथ्वी को भी क्षेत्र कहा जाता है, और सीता जी का प्राकट्य कहाँ से हुआ? पृथ्वी यानी क्षेत्र से हुआ। और कब प्राकट्य हुआ? जब हल के द्वारा यज्ञ के लिए जब हल चलाया गया था, यानी हल चलाने का अर्थ इधर क्या है? कर्म। जब हमें कर्मों को यज्ञार्थात कर्म और नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा? तब जीव तत्व ज्ञान में आत्मज्ञान जो है प्रकाशित होगा, वो सीता है। और वो सीता जो है वो स्वयं में केवल रामचंद्र जी के लिए, यानी हमारा प्राकट्य हुआ है, अगर आत्मज्ञान भी हो भी गया उसके साथ, उसके बाद क्या करना है? भगवान रामचंद्र को एक केंद्र में रखते हुए उनको ही अपने आप को समर्पित करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। सीता जी ने इसका शिक्षा दिया। खैर, अभी हम थोड़ा सा रामायण का शुरुआत के कुछ श्लोक तो बाद में चर्चा करें, लेकिन बाद में कथा के रूप में भगवान चारों कैसे प्राप्त हुआ। वैसे भगवान रामचंद्र या राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु के अवतार करके विष्णु पुराण कहता है। और कहीं कहा गया है कि ये शंख चक्र गदा पद्म के प्राकट अवतार है। वैसे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वर्णन हुआ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान ही चार रूप में प्रकट हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कुछ लोग कहते हैं चतुर्व्यूह चार पे प्रकट हुए, जो भी है, लेकिन चारों भगवान के ही स्वरूप है। उनका प्राकट्य बड़ा अद्भुत तरीके से हुआ। आप सबको मालूम है दशरथ जी को पुत्र नहीं थे, 60,000 साल तक पुत्र नहीं थे, 60,000 ईयर्स। उन्हें सोचा कि ठीक है, हम एक से विवाह करेंगे तो पुत्र हो जाएंगे, नहीं हुआ तो सोचा ठीक है दूसरे से कराएंगे। ऐसे करते करते 300 लोगों से विवाह किया, वे भी नहीं हुआ। भले ही 300 लोगों से विवाह किया, लेकिन महिषी पट्टा महिषी के रूप में 3 लोगों को स्वीकार किया, कौशल्या सुमित्रा कहके। दशरथ जी को पहले से एक पुत्री हुई थी, लेकिन पुत्र नहीं थे। लेकिन अंग देश में एक राजा थे, अंग राजा गौपाद, उनको पुत्र ही नहीं भी नहीं थे, पुत्री भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आपको तो पुत्र चाहिए, कम से कम पुत्री मुझे दे दो। पुत्री को दत्त रूप में लिया। और उस समय एक बड़े ऋषि थे जिसका नाम था विभोन्दक। ये कहा जाता है अलग अलग जंगल में के रहते थे, लेकिन आप दक्षिण भारत में उड़पी के पास जाएंगे, एक जगह है जिसका नाम है श्रृंगेरी, जहाँ श्रृंगेरी शंकराचार्य मठ को स्थापना किया, ये लीला उधर हुई, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। तो विभोंदक नामक बड़े ऋषि थे, वो इतनी तपस्या कर रहे थे, इतनी घोर तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कोई करता है तो किसको तकलीफ होता है? इंद्र को। इंद्र ने सोचा अगर इतनी शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या होगा मेरा, तो अप्सरा को भेजा। अप्सरा को कहा कि जाओ थोड़ा सा भंग करो तपस्या को। अप्सरा ने कहा नहीं, मैं ये बात नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता है। बड़े ऋषि तपस्वी है, उनको बिल्कुल आपकी सीट के प्रति कोई कामना नहीं है, लेकिन फिर भी इंद्र ने जोर जबरदस्ती किया, भेजा तुम जाओ। तो उसने क्या किया, बहुत सेवा किया। तो उनको मालूम है कि मैं कितने भी नृत्य करूंगी, कुछ भी करूंगी, ये ऋषि मेरे से आकर्षित होने वाले नहीं है। तो ये जो अप्सरा है, एक ऋषि कन्या का रूप धारण करके बहुत सेवा करने लगी और अनेकों अनेकों आध्यात्मिक कार्य में सहयोग देने लगी। जब ऋषि कुछ मंत्रों को उच्चारण करते थे, साथ में बैठ के वो सुनने लगे, तो ऋषि ने सोचा कि बहुत ही श्रद्धालु कन्या है, आध्यात्म में बहुत रुचि है। तो उन्होंने ऐसे ही पूछ दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, क्या वरदान चाहिए मांगो। तुमने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और मुझे आपके आपसे एक पुत्र चाहिए। तो विभोंदक ने सोचा रे मैंने क्या गलती कर दी, इनकी जो श्रद्धा है सेवा की भाव सोच के मैंने कह दिया, अभी क्या करूं। तूने कहा वो नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। तूने कहा कि मैं आपसे तो मांग ही नहीं हूं, मुझे वरदान चाहिए, आपने दिया वरदान, तो अगर आप नहीं देना चाहते आपकी मर्जी है। ऋषि एकदम दुविधा में पड़ गए, क्योंकि अगर कोई वचन देते हैं, वचन को वापस लेना, वो उस जमाने में तो मन में सोच भी नहीं सकते इस बात को। ये तो आजकल तो ऐसे हो जाता है, मतलब नॉर्मल है, जो स्वाभाविक है, इट्स ए डेली टू डे रूटीन, झूठ बोलना या वचनबद्ध नहीं होना। उस समय वचनबद्ध नहीं होना बड़ी चीज होती थी। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, आपने क्या कहा, विवाह करो, पुत्र चाहिए, उसके बाद मैं छोड़ के चले जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो विवाह हुआ और गर्भवती हुई। गर्भवती होने के साथ में विभोंदक ने कहा भी मैं चाह रहा हूं। विभोंदक चले गए वापस तपस्या करने के लिए। तब इन्होंने सोचा कि मेरा काम तो पूरा हो गया, मैं गर्भवती हूँ, मैं क्या करूँगा इस बच्चे से। तो अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने क्या किया है, इस बच्चे को अपनी गर्भ से निकाल के उन्होंने एक हिरण के गर्भ में डाल दिया और वो चली गई अपने स्वर्ग में। तो विभोंदक तपस्या कर रहे लेकिन उनका मन जो है शांत नहीं है। तो उनको ऐसा पता लगा कि दिव्य दृष्टि से कहीं ना कहीं मेरे जिम्मेदारियों में कहीं टूटी है, क्योंकि कभी अगर कर्म का बंधन रहता है, अगर बंधन के साथ वैराग्य लेता है, अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं उसमें पाप की कुछ चीजें रहती हैं, उनको तपस्या में बाधा आती है। तो दिव्य दृष्टि में देखा तब एक बच्चा रो रहा है, उनके सर से सिंह आया हुआ है, बच्चा रो रहा है। तब उन्हें और दिव्य दृष्टि से देखा है क्या हुआ, ये जो अप्सरा ने क्या किया, अपने गर्भ को निकाल के एक हिरण के अंदर डाल दिया था, हिरण ने बच्चा दिया, वो बच्चा रो रहा है, कोई देखभाल करने के लिए नहीं है उस बच्चे को। तब उन्हें सोचा अभी मेरा कर्तव्य बाकी है, तभी मेरा कर्तव्य पूरा करके उनको बढ़ा करके मेरे पुत्र को बढ़ा करके वापस आऊंगा करके वो गए और उस बच्चे को देखभाल के लिए। ऋष्यशृंगा श्रृंग से हिरण से उनका जन्म हुआ और उनके सर में ये श्रृंग का वो सिंह होता है वो था, और ऋषि के पुत्र होने के नाते उनका पूरा शरीर ऋषि का शरीर जैसा था। तो विभोंदक ने सोचा मेरा पतन का कारण स्त्री हुआ, मेरे पुत्र को ऐसा देखभाल करूंगा ताकि उनका स्त्री का दर्शन भी ना हो। दर्शन की क्या कहना, स्त्री क्या होती है उसको मालूम ही नहीं होना चाहिए। इतना हद तक कि इस जंगल में मनुष्य स्त्रियां ही नहीं बल्कि तपोवश बल के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो पशु होते हैं, वो स्त्री जाते की पशु होते हैं, उनको भी अपनी योग शक्ति से बहुत दूर कर दिया। विभोंदक ने अपना पुत्र को इतना शुद्ध तरीके से पढ़ाने लगे, जहां जहां वेदों में स्त्री का बात आती वर्णन आता उसको पढ़ाया नहीं उन्होंने, एकदम बिल्कुल शुद्ध ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा देना प्रारंभ किया। अनेकों साल की शिक्षा होते होते एक समय आया जब विभोंदक सारी वेदों को सीख लिया, जो जो वेद उन्होंने सिखाए, पिता ने सिखाया था। उस समय अंग राजा, उनकी राज्य में अकाल पड़ गया था। अकाल क्यों पड़ा था? क्योंकि सारे ब्राह्मण लोग नाराज हो गए थे। अंग राजा ने बहुत सारे गायों को दान दिया, एक ब्राह्मण को उन्होंने बहुत सारे गायों को दान दिया, एक गाय जो है भाग के वापस आई, और अंग राजा को मालूम नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ये एक गाय के साथ अन्य गायों को जोड़ के और एक ब्राह्मण को दान दिया। उसी समय एक ब्राह्मण भागते भागते आ गया, मेरा गाय वापस आ गए, मुझे वापस दीजिए, आपने दान दिया था। और राजा को पता लगा कुछ गड़बड़ है, तुमने को हाई ब्राह्मण को कहा, मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया है, आपका गाय को, उसके बदले में आपको जितना गाय चाहिए, इतना सोना चाहिए, राज्य चाहिए, वो सब ले लो। ब्राह्मण ने कहा, नहीं मुझे वही गाय चाहिए। होता है पति, भगवान लीला जो भी है। तब ये समस्या को ये सुलझा नहीं पाए, सारे ब्राह्मण जो अंग राज्य को छोड़ के चले गए। तो ब्राह्मण नहीं होता तो यज्ञ नहीं होता, यज्ञ नहीं होता है तो बारिश नहीं है, अकाल पड़ गया। उस समय उनके मंत्रियों से पूछा क्या करें, मंत्रियों ने कहा सारे ब्राह्मणों को वापस लाना है और एक पवित्र आत्मा को आपकी राज्य में उनका चरण पड़े तो बारिश आ सकता है, और साथ साथ में उन पवित्र आत्मा को मिलने के लिए सारे ब्राह्मण वापस आएंगे, यज्ञ संपन्न हो सकता है। कौन है वो? ऋषिशृंग। तो ऋषिशृंग के बारे में पूरा राज्य में सबको प्रचलित था। तब सभी लोगों ने कहा ठीक है, हम ऋषिशृंग को लाएंगे। तो राजा ने कहा कौन लेके आ सकता है? सब लोग घबरा गए, कौन है व्यक्ति ऋषिशृंग के पास जाके लेके आना? ऋषिशृंग को तो लेके आ सकते, लेकिन विभोंदक को मालूम पड़ा तो उनकी तपशक्ति के द्वारा पूरा राज्य को भस्म कर सकता है। तो क्या करें? एक कन्या थी ने कहा मैं करूंगी, राज्य के लिए भले अपना प्राण चला जाए, राज्य की प्रजा की रक्षा के लिए, उनके संतोष के लिए, उनके सुख के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए राज्य की रक्षा करने के लिए कन्या अपनी अन्य सहेलियों के लेते हुए सभी लोगों ने एक ऋषि का रूप धारण किया। ऋषियों का रूप धारण करके, जटा वगैरह धारण करके एक बड़े जहाज में ऋषिशृंग जहां यज्ञ कर रहे उधर पहुंचे। उस दिन क्या हुआ था, ऋषिशृंग के पिता विभोंदक ने कहा कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, रोज नित्य रूप में यज्ञ करते रहना, ऐसा बोल के गए और उसी समय ये जहाज पहुंची। इधर के कन्या सभी लोग उतर के ऋषिशृंग को दूर से देखते हुए ये वेदों के मंत्रों को उच्चारण करने लगी कन्याएं। ऋषि सिंह दूर से देख रहे हैं कौन साधु है, कौन ऋषि है, बड़ा विचित्र रूप है उनका। तो धीरे धीरे से मधुर तरीके से वैदिक मंत्रों गाते हुए ये ऋषि सिंह के नजदीक में आए। तो ऋषि सिंह ने पूछा आप कौन हो? ने कहा कि हम साधु हैं, आपसे मिलने के लिए आए और आपको लेके जाने के लिए आए। तो ने कहा मैं नहीं जा सकता आपके साथ। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए हमारे साथ में चलिए, आपके पिताजी जब तक आएंगे तो आप वापस आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपसे हमको वैदिक मंत्रों को सीखना है। उनकी जो मधुर भाषा, उनकी मधुर आवाज को सुनते हुए ऋषिशृंग के अंदर कुछ विचित्र अनुभूतियां होने लगाई, क्या है, कौन लोग हैं? वैसे तो इतना सुंदर तरीके से गा रहे हैं, वैसे मेरे मन में और शरीर में विचित्र अनुभूतियां हो रही है, कौन है? इस प्रकार के रूप वाले ऋषियों को मैंने कभी वेदों में सुना नहीं है, देखा भी नहीं है। और धीरे धीरे से बातचीतों में उनको आकर्षित कर लिया। ऋषिशृंग को जहाज की ओर बैठाते हुए अंगराज राजा के पहुंचे, और जैसे ऋषिशृंग जहाज से उतर के अंग राजा के राज्य पे उनका चरण पड़ा, शुद्ध ब्रह्मचारी है, जहां उनका चरण पड़ा पूरा सुंदर बारिश, सब लोग खुश, और राजा अंगराज आके ऋषिशृंग को स्वागत किया। स्वागत करते उस समय सारे ब्राह्मण ऋषिशृंग से मिलने के लिए आए, और इसी समय क्या हुआ, विभोंदक आके देख रहे हैं इधर ऋषिशृंग नहीं, दिव्य दृश्य से देखा सारी घटना दिखाई पड़ी। तुरंत विभोंदक अंग राजा के पास गए, जाके कहने लगे तुमने मेरे पुत्र को धोखा देके इधर लेके आए हो, सारा राज्य को भस्म कर दूंगा। अंग राजा चरण में पड़ा, विभोंदक के चरण में, उन्होंने कहा कि हमारी व्यथादि इस प्रकार थी, क्या करें। तो उन्हें कहा कुछ समय के लिए ऋषि श्रृंग को हमारे साथ में रहने दीजिए और मेरी पुत्री जो शांता है उनके साथ विवाह हो। विभोंदक ने कहा ठीक है, लेकिन जैसे उनका कोई पुत्र गर्भवती होती है, पुत्र का जन्म होता है, तुरंत वापस भेज दीजिए। इस प्रकार कह के विभोंदक चले गए। दशरथ की पुत्री शांति उनका विवाह हुआ था ऋषि सिंह के साथ। जैसे ही विवाह हुआ उसी समय अंग राजा उनके जो कैपिटल उनकी राजधानी पे बाहर दशरथ राजा के सैनिक, अनेकों सैनिक दशरथ के साथ में आ रहे हैं। अंग राजा को घबराहट हुई, क्या दशरथ मेरे ऊपर क्यों आक्रमण करने आ रहा है। तो अंग राजा ने निमंत्रण भेजा, क्या हुआ। दशरथ कहने लगे मुझे आपके जो दामाद ऋषि श्रृंग चाहिए। तो ऋषि श्रृंग से निवेदन किया गया था। ऋषि श्रृंग ने कहा मैं चलता हूं अयोध्या यज्ञ करने के लिए, क्योंकि उधर राजस्व यज्ञ संपन्न करने के लिए तत्पर थे दशरथ। लेकिन बाद में वशिष्ठ ने कहा राजस्व यज्ञ नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको पुत्र का मिश्र यज्ञ करना चाहिए, तभी आपको पुत्र प्राप्त होंगे। तो पुत्र का मिश्र यज्ञ कौन कर सकता है, इस संसार में एक ही व्यक्ति है, वो है ऋषि श्रृंग। तो ऋषि श्रृंग ने यज्ञ किया, पुत्र का मिश्र यज्ञ किया। इतना भव्य तरीके से यज्ञ हुआ, सारे देवता लोग उपस्थित थे। भगवान की योजना देखे, सारे देवता लोग, सारे राजा, इतना हद तक कि महर लोग, जन लोग, तप लोग से सब लोग आए थे इस यज्ञ को दर्शन करने के लिए। जब यज्ञ पूर्णाहुति जैसे हो ही रहा था उस समय उस अग्नि से एक बड़ा भव्य पुरुष प्रकट हुए। 3 माइल लंबे थे उनके, 3 माइल्स लॉन्ग, और उनके हाथ में एक मटका, उसके ऊपर एक सोने का थाल में ढका हुआ था खीर था। 3 माइल लंबा व्यक्ति शरीर में कितना बड़ा होगा देखिए। और उधर से कहते दशरथ महाराज को कि आप अपनी पत्नियों में बांटिए, इतना ज्यादा खीर कैसे बांटेंगे भाई। फिर ऋषि सिंह ने प्रार्थना की यज्ञ पुरुष से, फिर साधारण सा साइज में हो गए और दशरथ महाराज को दिए। फिर दशरथ महाराज ने इस खीर को अपनी पत्नियों में बांटा, महिषियों में बांटा, कौन, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सबसे पहला कौशल्या पत्नी है, भले 3 महिषी हैं उनमें से एक ही पत्नी है। कौशल्या को सबसे पहला दशरथ महाराज ने क्या किया, दशरथ ने आधा भाग करके आधा कीर कौशल्या को दिया, और उस आधा जो बचा था उसमें और आधा, यानी 1/4 और 1/4, एक चौथाई जो है, एक चौथाई कौशल्या सुमित्रा को दिया, और जो आधा या एक चौथाई बचा था उसको आधा भाग किया, आधा भाग करके 1/8 जो है वो कैकेयी को प्रदान किया, बाकी जो 1/8 है, 8वां जो भाग है जो बचा हुआ, वापस सुमित्रा को दिया। नहीं, सुमित्रा को 2 बार खीर खिलाया। कुछ समय के बाद तीनों को 4 पुत्र हुए। कौशल्या ने जन्म दिया भगवान रामचंद्र को। नवमी के दोपहर के समय, और कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी जन्म दिया दशमी के सुबह के समय भरत को, और सुमित्रा ने जन्म दिया दोनों को, कौन, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। कल आपको सुनाया था बात में लास्ट में कि जैसे ये चारों बच्चों का जन्म हुआ रो रहे हैं, मां का दूध भी नहीं पी रहे हैं, ऐसा बोर बोर करके रो रहे हैं, कोई समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। सुमित्रा, इन तीनों माताओं में सुमित्रा का नाम है अस्तित्व में, हम आगे कुछ परसों या नरसों इसके बारे में चर्चा करेंगे, सुमित्रा का प्रवचन को चर्चा करेंगे। रामायण में 24,000 श्लोक है, 24,000 श्लोकों को हजार हजार के रूप में डिवाइड करके पहला 1,000 का श्लोक है तप, तपस्वाध्याय निरतम दूसरा हजार वाला श्लोक का पहला श्लोक, पहला श्लोक का पहला अक्षर है सा। वैसे 24,000 श्लोक जो है उसका अगर सच में देखेंगे गायत्री मंत्र होता है, इसको गायत्री रामायण कहा जाता है। रामायण साधारण चीज नहीं है। तो ये 24,000 श्लोक में सर्वोच्च श्लोक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे प्रधान श्लोक अगर कुछ है तो हमको अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। और ये श्लोक को किसने उच्चारण किया? सुमित्रा ने उच्चारण किया। नाम देखिए सुमित्रा, क्या नाम है सुमित्रा, जो सुंदर मित्र है सुमित्रा, सबकी सबके प्रति मित्रता की भाव रहता है, उनको सुमित्रा कहा गया है। द टॉप मोस्ट श्लोक इन रामायण, इसकी चर्चा हम बाद में कहेंगे, लेकिन बात यह है कि इसे जानना चाहिए। सुमित्रा ये सबसे पहले युक्ति लगाया, दोनों बच्चे रो रहे, मैं जाके देखती हूँ कौशल्या के यहाँ क्या हो रही है। तो कौशल्या के पास गई तो उन्हें देखा, दोनों बच्चों को सुलाया राम के बाजू में, यानी लक्ष्मण शत्रुघ्न को, राम एकदम बिल्कुल प्रसन्न चित्त होकर हंसने लगे और इधर लक्ष्मण भी एकदम प्रसन्न चित्त होकर हंस रहा है। लेकिन अभी शत्रुघ्न रो रहा है, राम के बाजू में फिर भी रो रहा है। तो तुरंत शत्रुघ्न लेके गए कैकेयी के पास, कैकेयी के अंतपुर में, जैसे आखिर इधर भरत रो रहा है। और जैसे शत्रुघ्न को भरत के बाजू में सुलाया, हाँ बड़े आनंद के साथ दोनों हंस रहे, दूध पीने लगे। सुमित्रा जन्म दे दिए बच्चों को, दोनों को दे दिया, एक बच्चे को राम को दे दिया, एक बच्चे को भरत को दे दिया। मां होने पर भी मां नहीं है। देखिए तीन प्रकार की माताएं होती है संसार में। मैंने कहा कि ये जो प्रवचन होगा राम कथा, उसके अंदर केवल शिक्षा या सिद्धांत होगा, कथा तो वर्णन करने मात्र के लिए जहां जरूरी उधरी करेंगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए लोग शिक्षा देने के लिए बस। तो कल हमने शिक्षा ही प्राप्त किया था, किस प्रकार सीता जी का विवाह रामचंद्र को हुआ, सबसे पहला पितृकृतार्थ, माता पिता की आशीर्वाद से राम ने सीता को स्वीकार किया। माता पिता की आशीर्वाद के बिना जो विवाह होता है वो विवाह नहीं कहा जाता है उसको। जैसे जानवर के समाज में विवाह नहीं होता है, जानवर ऐसे पड़े रहते जीते ऐसे पड़े रहते हैं, इसलिए पितृकृतार्थ सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद गुणात, बाद में रूप गुणात, रूप तो लास्ट चीज है, लेकिन अभी रूप पहला हो गया, बाद में गुण देखा जाता है, गुण देखने तक की अभी टिकता नहीं है विवाह। पितृकृतार्थ को क्या कहना, माता पिता की तो आशीर्वाद को कोई पूछता भी नहीं है, इन्फॉर्म करते हैं। खैर अभी वापस देखिए, तीन प्रकार की माताएं होती। एक माता जो है वो चाहती कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहे, दूसरा बिगड़ जाए, दूसरा चले जाए, उसको वो दुखी हो जाए। ये कई कई तो ये माँ थी, कितना प्रेम थी देखो भरत के साथ, इतना प्रेम था, वो प्रेम वो उस प्रकार का प्रेम था जो जिसकी वजह से भरत ने सोचा कि मैंने कैसे माँ की कोख से जन्म लिया। देखिए एक व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वो कौन सा राजसिक है तमसिक है वो देखना चाहिए। प्रेम बड़ी चीज नहीं होता है, लेकिन कौन से स्तर का प्रेम है वो जानना जरूरी है। देख लीजिए एक शेर भी अपने बच्चे से प्रेम करता है कि नहीं, लेकिन आपको बोले शेर भी आपसे प्रेम करता है, चलो आप शेर के साथ बैठो, नहीं, अगर शेर आके बोले आई लव यू तो भाग जाएंगे आप, ऐसा प्रेम जरूरत नहीं है। इधर कैकेयी का प्रेम, मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा राजा बनना चाहिए, दूसरों को जंगल जाना चाहिए, एक प्रकार की मां। दूसरा कौशल्या, मुझे मालूम नहीं दूसरे के बच्चा जो क्या हो उनसे मतलब नहीं, मुझे केवल मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए बस, वो अच्छा रहे अच्छा है, बुरा रहे बुरा है, मुझे कुछ मतलब नहीं है। कौशल्या है, देखिए कैकेयी का पुत्री कैकेयी है, कौशल राजा की पुत्री है कौशल्या, लेकिन सुमित्रा के विषय में कोई महिमा किसी को भी नहीं मालूम, सुमित्रा कहां से कहां, कोई रामायण में कोई पुराण में उनके विषय में प्राप्ति नहीं होता, उनका नाम ही सुमित्रा है जो सबके साथ मित्रता बना के रखती है। शी इज द फ्रेंड फॉर एवरीवन. मां होने पर भी मां नहीं, दोनों बच्चों को दे दिया. और चारों छात्र चारों खुश. कल हमने लास्ट में आपको आखिरी में इस बात को कहा था कि चारों को साथ में रख के क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या शिक्षा प्राप्त होता है, क्या सिद्धांत है उसके पीछे. अगर हम लाइन में उन चारों भाइयों का लिस्ट लेंगे, सबसे पहला जन्म किसका हुआ था? राम का. बाद में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न. अगर लाइन से लेंगे उसका नाम क्या होना चाहिए? राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न. लेकिन कभी हम ऐसा नहीं बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. ये क्यों है? उसके पीछे बहुत गहरा सिद्धांत है. रामायण वेद है. वेदों में चार पुरुषार्थों का वर्णन है. क्या चार पुरुषार्थ? धर्मार्थ, काम, मोक्ष. राम जो है धर्म का प्रतीक है. रामो विग्रहान धर्मः, लक्ष्मणः लक्ष्मणे लक्ष्मीवर्धनः, भरणात् भरतः, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः. ये चारों बात वाल्मीकि रामायण में आता है. अयोध्या कांड का पहला श्लोक है, उसके अंदर आया है शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न. शत्रुघ्न कौन है? नित्य शत्रुघ्न है. नित्य तरीके नित्य शत्रुओं को मारने वाला है, या हमारे शत्रुओं को नित्य रूप में मारने वाला है, नित्य शत्रुघ्न. राम धर्म का प्रतीक है. लक्ष्मण जो है अर्थ का प्रतीक है. और भरत जो है मोक्ष का प्रतीक है. और शत्रुघ्न जो है काम का प्रतीक है. हमारे पास जो लक्ष्मी या धन होता है, धन का एक ही उपयोग है, धर्म की रक्षा करने के लिए. इससे धर्म और अर्थ साथ में है, ये दोनों साथ साथ में चलता है. धर्म अर्थ के लिए नहीं बल्कि अर्थ धर्म के लिए है. आजकल लोग सोचते हैं मैं धार्मिक कार्य करके अर्थ को संपादन करूंगा. नहीं, धर्म का उद्देश्य है धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्था उपकल्पते. इसलिए धर्म के बाद आता है अर्थ. ये हमने क्या कर दिया? धर्म के ऊपर अर्थ को रख दिया. लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः. अब देखिए लक्ष्मीवर्धनः, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि श्लोकों में लक्ष्मीवर्धन बोलते हैं. लक्ष्मण के पास है क्या? सब कुछ त्याग कर दिया, राम के साथ चला गया लक्ष्मण, पत्नी को भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं उनके पास. लेकिन लक्ष्मीवर्धन श्रीमान, जब गजेंद्र मोक्ष की बात है, गजेंद्र हजारों साल तक बहुत तपस्या की, बहुत संघर्ष किया, जब सारा उनका संपत्ति ऐश्वर्य शक्ति सब खत्म हो गया, अभी उनका कोई भरोसा नहीं रहा अपने ऊपर, अपने परिवारों के ऊपर, अपनी संपत्ति. वो राजा था गजेंद्र. खाली उन्हें सोचा बस में कमल का फूल भगवान को अर्पण करो. अर्पण जैसे किया तब उधर वर्णन आता है, विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है, श्रीमान गजेंद्र. अभी श्रीमान कैसे बना भाई? इसका हालत खराब है, क्योंकि अभी भक्ति हुआ. जिसके हृदय में भक्ति है वो श्रीमान. विभीषण अपना घर छोड़ के आया है राम का शरण लेने के लिए. राम वर्णन करते विभीषण को, श्रीमान. देखिए जिसके हृदय में भक्ति है वो श्रीमान है. लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः. इसलिए अर्थ का एकमात्र उपयोग है धर्म की रक्षा करना, धर्म के सेवा करना. जो अर्थ धर्म की सेवा में नहीं लगता है वो अर्थ अनर्थ होता है. लक्ष्मी का एकमात्र कार्य नारायण की सेवा करना. और जो रही स्वयं नारायण प्रकट हुए राम के रूप में, इसलिए राम के सेवा में लक्ष्मी को इस्तेमाल करना. लक्ष्मण अर्थ का प्रतीक है. दूसरे बात कौन है? काम. कौन काम कौन है? शत्रुघ्न. शत्रुघ्न काम है. और काम का काम मतलब इच्छा. क्या इच्छा होना चाहिए? एकमात्र इच्छाओं का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए. क्या है वो? मोक्ष. भरत मोक्ष है। तो आप बोलो भरत भरत को आप मोक्ष कैसे कह सकते हो भाई? क्योंकि मोक्ष मतलब क्या है? हमारा जो जो वो चीज जो हमारा नहीं है उसको अपना जैसा देखभाल करना, लेकिन किस रूप में? सेवा की भाव में। देखिए हमारे पास जो भी संपत्ति है, धन इत्यादि जितने भी चीजें हैं, उन सबका एकमात्र उद्देश्य है इसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए ये समझना चाहिए। मेरा नहीं है सबसे पहला। भरत ने क्या किया? राज्य को पालन किया। कैसे राज्य को पालन किया? क्या भावना से राज्य को पालन किया? सबसे पहले ये सीखा कि मेरा नहीं है, ये किसका है? राम का है। लेकिन राम का है मानने के बाद भी भरत ने इस राज्य को अपना जैसा देखभाल किया। इसको त्याग कहा जाता है। देखो वस्तु को त्याग करना त्याग नहीं माना जाता है, उस वस्तु के प्रति हमारा आसक्ति है उसको त्याग करना ये त्याग कहा जाता है। ये रामायण में भरत ने सिखाया सार्वजनिक को। भरत राजा है लेकिन आचार्य ने कहा कि वो मोक्ष के या त्याग के प्रतीक है। क्यों? उनका राज्य नहीं है लेकिन फिर भी अपना है करके उस तरीके से उन्होंने देखभाल मात्र किया, राज्य को देखभाल मात्र किया। कभी भरत ने ये कभी नहीं समझे राज्य मेरा है, ये सोचा राम का है, राम के शक्ति के द्वारा मैं इस राज्य को देखभाल करूंगा। इसको वैराग्य कहा, इसको त्याग कहा गया है। भरत ने सिखाया हमको त्याग क्या होता है। व्हाट इज त्याग? असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा, कल आपको बताया था इस बात को। वेदों में जो उत्तर भाग में उपनिषद में जो सिखाया गया है, पूर्व भाग में कर्म को जो सिखाया गया है, उसी चीज को ईशोपनिषद में कहा गया है। क्या है? तेन त्यक्तेन मुंजीताम, त्याग भी है और भोग भी है, दोनों का समन्वय जो है ये गीता है। भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण जिन दृढ़ चित्वा, इस बात को सिखाया भरत ने हमको। जो राज्य अपना नहीं है उसको देखभाल किया, अपना जैसा देखभाल किया, कभी जीवन एक बार भी उन्हें सोचा नहीं कि मेरा है। इसको त्याग कहा जाता है। गृहस्थों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक उपदेश है। कभी भी ये मत सोचना कि ये मेरा घर है, मेरा पत्नी है, मेरा बच्चा है, ये भगवान के है। मैं कौन हूं? केवल उनको रखवाल मात्र हूं, उनको देखभाल करने का सेवा मात्र मुझे मिला है, जैसे भरत ने किया। भरत को परम वैरागी माना गया है। इच्छा केवल एक ही चीज का होना चाहिए, हुए किसका? मोक्ष का। इसलिए ये चार पुरुषार्थों को इन चार लोगों के द्वारा सबको रामायण में हमको शिक्षा प्राप्त होता है। तभी इन चारों के विषय में जैसे जन्म होने के बाद तुरंत इन चारों का वर्णन आता है, आप बताने के प्रयास करते हैं। सर्वे वेदविदा सुरा सर्वलोक हिते रता, कौन है? सर्वे वेदविदा सुरा। जन्म लेते ही उनको शिक्षा के लिए विश्वामित्र के पास भेजा गया था। कल आपने ड्रामा देखा, सॉरी वशिष्ठ के पास भेजा गया था। कल आपने ड्रामा देखा, वशिष्ठ ने कहा कि दशरथ जी आप चारों पुत्रों को हमारे छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। दशरथ ने कहा नहीं, हम बैठ के देखना चाहते हैं कि आप उनको कैसे शिक्षा दे रहे हो। अरे बोल बच्चे आप शांत रहोगे तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, तो वशिष्ठ ने कहा राम दशरथ को आप छोड़ दीजिए। दशरथ ने कहा नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे शिक्षा दे रहे हो। तो मैं कहा ठीक है देखेंगे। उसने कहा दशरथ को देखिए आप देखना चाहते हो, आप बोलते हैं स्वाभाविक है, लेकिन आपका पुत्रों का जन्म भी अस्वाभाविक तरीके से हुआ, इसलिए मैं चाहता हूँ आप चले जाओ अपने अंतपुर में सिखा दूंगा। तो वशिष्ठ ने जितने प्रारंभिक शिक्षा दिया था, इसने कहा कि सर्वे वेदविदा शूरा, बहुत शूर थे, सर्वे लोकहितेरताः, चारों के चारों जो है लोकहित के लिए ही उनका प्राकट्य हुआ है। इसके पीछे बड़ा वेदांत है, वेदांत में भक्ति का भाव है। कहा गया है कि इसके पीछे भगवान को एक ही काम मालूम है, दूसरों को हित करना, उसके अलावा और कोई चीज़ मालूम ही नहीं है। और सर्वे ज्ञानोपसंपन्न सर्वे समुदिता गुणा, सब सारा ज्ञान से संपन्न थे और सारे प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थे, लेकिन फिर भी चारों में तेषाम अपि महातेजः रामः सत्य पराक्रमः, तेषाम इन चारों में राम जो है सर्वश्रेष्ठ है, रामः सत्य पराक्रमः, वो सत्य को पालन करने में या सत्य को स्थापना करने में वो पटु है, पराक्रम है। इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः, क्या वर्णन हुआ देखिए रामचंद्र का, पहला वर्णन है इधर इस जन्म लेने के बाद, इष्ट सर्वस्य, सर्वश्रेष्ठ सबका प्रिय थे राम, मुझे पसंद नहीं आज करके कोई आज तक व्यक्ति नहीं बोला है, रावण भी नहीं बोला है। रावण भले युद्ध किया अलग बात है, लेकिन राम को देख के मोहित हो गया रावण। राम का स्वरूप इस प्रकार है, इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः, चंद्रमा जैसे एकदम बिल्कुल निर्मल। गदस्कंदे अश्वपृष्ठे च रथ चर्या सुसंपन्न सम्मतः, तो गजस्कंदे अश्वपृष्ठे गज के ऊपर चढ़ने में, अश्वपृष्ठे ऐसा नहीं कि घोड़ा जो उसके बैठना कोई बड़ी कला तो नहीं होता, हमने भाग घोड़ा होता है ना, भागता रहता है, उसके ऊपर बैठना, उसके ऊपर उसको पकड़ के बैठना वो कला होती है। गजस्कंदे अश्वपृष्ठे च रथ चर्या सुसंपन्न, रथ को चलाने में बहुत संपन्न। धनुर्वेद च निरतः, धनुर्वेद में एकदम पारंगत। पितुः शुश्रूषणे रतः, रामचंद्र के कार्यों में वीर शूरता का वर्णन करते क्या कहा गया है, पितुः शुश्रूषणे रतः, पिताजी का सेवा। दशरथ ने कुछ चीज बोला था तुरंत करने के लिए तैयार, क्यों आ वो पूछने कोई मतलब ही नहीं, क्यों करो क्या करो बातें करूंगा, कुछ था ही नहीं। देखिए अभी रामायण सुनाएंगे बच्चों को तो ये शिक्षा प्राप्त होगी, क्या शिक्षा प्राप्त होगी, पितुः शुश्रूषणः, पिता का सेवा करना पुत्र कर्तव्य होता है। कभी कभी माता पिता बोलते हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, क्यों आपने रामायण नहीं सुनाया ना, इसलिए आपने टीवी ला के रखा घर में, महाभूत श्लोक महाभूतान अहंकार हो, तब जैसे भूत का दूसरा अर्थ है कि अनेकों अनेकों ऐसे अर्थ है भूत का, कि जब महाभूतान अहंकार हो शब्द तो ये श्लोक पढ़ता हो तो मुझे टीवी याद आता है, ये महाभूत है। आप इसको फेंक दो, रामायण सिखाओ तो राम जैसा, नहीं तो स्कूल में ऐसी क्या सीखते हैं बच्चे औरंगजेब उनके विषय, उसने क्या किया था, भाइयों को मार दिया था, पिता को जेल में डाल दिया, वही सीख क्या थे। धनुर्वेद निरतः पितुः शुश्रूषणोरतः, अभी आगे आया है, बाल्यात् प्रवृत्ति ही सुस्निग्धो, बाल्यात् प्रवृत्ति ही सुस्निग्धो, इतना नम्रता थी लक्ष्मण में कि बाल्यात् प्रवृत्ति ही, बचपन से ही उनको कोई सिखाया नहीं था, जन्म से ही लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, ये लक्ष्मण कौन है, लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातृः ज्येष्ठस्य नित्यशः नित्यशः हमेशा, क्या करते थे भगवान रामचंद्र की जो भाई है उनके प्रति मुग्ध होकर रहते थे, वो जहां जाते थे पीछे पीछे जाते थे, ऐसा वर्णन आता है। सर्वप्रियकर तस्य रामस्यापि शरीरतः, शरीर के सारे जरिमी शरीरतः, लक्ष्मण जो क्षत्रिय जो है वो सब प्रकार के कार्य करेंगे लेकिन दूसरे व्यक्ति का शारीरिक सेवा नहीं करेंगे, लेकिन लक्ष्मण जो है राम का शारीरिक कार्य सेवा कर रहे थे। इसलिए लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इव अपरः, अभी लक्ष्मण जो है किसका पुत्र है, सुमित्रा का पुत्र है, राम कौशल्या का पुत्र है, लेकिन बाकी दो भाई होने पर भी भरत भी है शत्रुघ्न है, लेकिन लक्ष्मण जो है राम के लिए कैसे थे, बहि प्राण इव, राम का प्राण जो है वो किसी में नहीं, आप उनके पास नहीं था, लक्ष्मण में था, और लक्ष्मण का प्राण कहाँ था? राम में। देखिए ये भाई होते हैं, आज तक भी अभी बोलते ना भाईचारा, मतलब राम लक्ष्मण जैसा बोलते हैं भाईचारा। लेकिन घर में मालूम है आपके दो बच्चे हो गए तो क्या झगड़ा करते, क्या झगड़ा करते, क्यों मालूम नहीं, आपने रामायण नहीं सुना ना सुनाया। कंप्लेन मत करना, दोनों बच्चे झगड़ते हैं। देखिए दशरथ के पुत्र हुए, तीन पत्नियां थी, चार पुत्र हुए, लेकिन कभी एक भी कंप्लेन नहीं किया दशरथ ने, जो झगड़ते हैं। राम लक्ष्मण जैसे पुत्र प्राप्त हुए, राम का प्राण लक्ष्मण में, लक्ष्मण का प्राण राम में, क्यों मालूम है? रामायण। देखिए रामायण पढ़ाना चाहिए, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है रामायण। जब से जू में मैंने कहा कि कथा कहने के लिए, तब से रामायण थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया। मैं बहुत अफसोस किया बचपन से क्यों नहीं पढ़ा रामायण को। इस्कॉन ज्वाइन करने के 16-17 साल हुआ लेकिन रामायण नहीं पढ़ा। मैं अफसोस खुद कर रहा हूं अभी इस बात को, सही बात है। विशेष एक एक रत्न प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन आता है आगे कि रामचंद्र के गुणों को वर्णन में, रामचंद्र का हृदय को सागर जैसा वर्णन किया गया है, और सागर में क्या प्राप्त होता है? रत्न प्राप्त होते हैं। जो राम का हृदय नामक सागर में जो डूबता है उनको रत्न प्राप्त होते हैं, ऐसा अद्भुत तरीके से वर्णन हो रामायण में एक 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 चीज है। तो वही प्राण जैसे थे, आगे नचते ना बिना निद्रा, राम लक्ष्मण के बिना सोते ही नहीं थे, जन्म से ही हुआ ना, ना सोते थे ना खाते थे ना पीते, दूध पीते थे। राम जन्म लेते ही रोना शुरू किया, मां का दूध तक नहीं पिया लक्ष्मण जब तक नहीं आया। तो वर्णन है नचते ना बिना निद्रा, लक्ष्मण के बिना राम सोएंगे नहीं। लभते पुरुषोत्तम निद्राम, लभते पुरुषोत्तम पृष्ठम मृष्टान्नम, मृष्टम अन्नम उपानीतम, बहुत स्वादिष्ट भोजन भी सामने आए ना, राम के सामने रखे कौशल्या, वो नहीं लेते, लक्ष्मण आए तभी लूंगा। लेकिन आजकल की बच्चा क्या करता है, किसी के हाथ में कुछ दिया तो तुरंत छीन के खाता है, बंदर, बंदर का स्वभाव, कुत्ते का स्वभाव आ गया। देखिए राम का स्वभाव, मृष्टम अन्नम उपानीयम अश्नाति नहीं तम बिना, नहीं तम बिना लक्ष्मण के बिना न अश्नाति, खाते नहीं राम। आगे राम लक्ष्मण का वर्णन होने के बाद इधर वर्णन करते हैं, यदा ही हयम आरूढ़ो मृग्याम याति राघव, जैसे राघव राम हयम आरूढ़ अश्व के ऊपर बैठते हैं या आरूढ़ चढ़ते हैं, तो लक्ष्मण जो है वो पीछे पीछे से आ रहा हूं, राम मैं आ रहा हूं, मैं भी रुको आ रहा हूं करके एकदम खेल कूद में भागते हैं। क्या करते हैं? अथयनम पृष्ठम अभ्येति स धनु परिपालयन भरतस्यापि शत्रुघ्नो, वर्णन आता है इधर, भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मण अवरोजो ही सहा, जैसे राम और लक्ष्मण के बीच में संबंध था उसी प्रकार भरत और शत्रु के बीच संबंध था। भरतस्य ही अपि शत्रुघ्नो, जैसे राम के लिए लक्ष्मण था भरत के लिए शत्रुघ्न। प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य च आसीनं यथा प्रियः। देखिए ऐसे समय होता जा रहा है, 9:30 बज गया, लेकिन एक बात मैं कह के समाप्त करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, वो मैं कल चर्चा करता हूं, क्योंकि ये रामायण का पहला श्लोक है। तो उसके पहले राम लक्ष्मण भरत शत्रु के बारे में चार बताया था, कल भी बताया था, आज भी बताया उसके विषय में, कौन है? राम धर्म है, लक्ष्मण जो है वो काम है, भरत जो है वो शत्रु जो है काम है, और भरत जो है मोक्ष है। राम लक्ष्मण भरत शत्रु, इस प्रकार हमने आपको वर्णन किया। अभी ये बात वर्णन करते हैं, ये चारों ने हमको क्या सिखाया। ये प्रायः ये जो बात आज कह रहा हूं अभी, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा कल और परसों तक प्रायः। क्या है वो, ये चारों के चार आके हमको क्या सिखाया, सबसे पहले राम ने सिखाया, क्या सिखाया, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, यानी मनुष्य को अपने अपने कर्तव्यों को कैसे करना चाहिए, भौतिक कर्तव्य, आध्यात्मिकता नहीं सिखाया रामचंद्र ने, भौतिक कर्तव्य को कैसे करना चाहिए वो सिखाया, एक सज्जन को कैसे रहना चाहिए, एक मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, एक मित्र के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, पति के रूप में हो, पिता के रूप में हो, राजा के रूप में हो, कैसे रहना चाहिए वो राम ने सिखाया, स्वयं भगवान है। लेकिन बाकी तीन है, कौन है वो, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन तीनों का विशेषता है, इन तीनों ने राम की सेवा की, यानी हमको भक्ति सिखाया, स्वयं भगवान राम के रूप में आके मनुष्य को कैसे जीना चाहिए सिखाया, और तीनों ने भक्ति कैसा करना चाहिए सिखाया। उसमें से लक्ष्मण ने सिखाया, क्या सिखाया हमको, एक होता है स्वतंत्र, दूसरा होता है परतंत्र, एक होता है स्वार्थ, दूसरा होता है परार्थ। इस स्वार्थ का विपरीत शब्द है परार्थ, परार्थ भावना को सिखाया, राम को अपना जीवन मान के जीना, ये भक्ति का अंतरंगिक बात है, ये है परार्थ भावना। हम जब कोई कार्य करते हैं किस भाव से करना चाहिए, परतंत्र भावना, यानी मैं संपूर्ण रूप में भाव राम के ऊपर निर्भर करते हुए कार्य कर रहा हूं, ये भरत ने सिखाया। तीसरा एक भाव है भागवत सेवा, यानी भक्त की सेवा कैसे करना चाहिए वो शत्रुघ्न ने सिखाया। शत्रुघ्न राम के बाजू में सोने पर भी रो रहे हैं, जब तक भरत नहीं मिलेंगे शत्रुघ्न को शांति नहीं है। शत्रुघ्न ने किसका सेवा किया, भरत का सेवा किया, जो भरत ने राम का सेवक है, यानी सेवक का, भगवान का सेवक का, सेवक का भाव जो है वो शत्रुघ्न ने सिखाया। राम के बिना जी नहीं सकता, राम के साथ में रहूंगा, इस प्रकार की भाव जो है लक्ष्मण में सिखाया, जो हमारे हृदय में अंतरंगिक हृदय में होने वाले भक्ति की भावना को इस प्रकार जागृत करना। जब कार्य करेंगे कैसे कार्य करना होगा, भक्ति के कार्य को राम के ऊपर निर्भर करते हुए करना होगा, वो हमको भरत ने सिखाया। देखिए ये चारों को हमने धर्मार्थ काम मोक्ष के रूप में देखा, अभी यही चार जो है हम अभी चार प्रकार के हमारी व्यवहार को सिखाया। एक जो है सामाजिक व्यवहार कैसे होना चाहिए राम ने सिखाया, भक्ति के अंदरूनी भाव कैसा होना चाहिए वो लक्ष्मण ने सिखाया, भक्ति के कार्यकलापों को किस तरह करना चाहिए वो हमको भरत ने सिखाया, और भक्त की सेवा कैसे करना चाहिए उसको शत्रुघ्न ने सिखाया। अभी इन चारों के भी परिचय हमने दिया, क्यों प्रकट हुए, अभी रामायण का हम शुरुआत करेंगे। रामायण का पहला श्लोक है, ये वाल्मीकि के द्वारा उच्चारण किया गया श्लोक है। वाल्मीकि ने नारद जी से कुछ प्रश्न पूछे, मैं उन मनुष्य के बारे में सुनना चाहता हूं जो अभी इस समय उपस्थित, यानी इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ वो राम के प्राकट्य के बाद हुआ। कुछ समय से कहा गया है कि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा राम के प्राकट्य से पहले, वो रामायण अलग है, वो कुछ और कल्प का है, लेकिन अभी ये जो रामायण का वर्णन जो हमारे पास उपलब्ध है, ये रामायण जो है अस्मिन सांप्रतिम लोके, इनका प्रश्न ये था, अभी अस्मिन मतलब अभी समय में एक व्यक्ति का लक्षण वर्णन कीजिए जिनके पास इस प्रकार के गुण हो। इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं, मुझे ऐसा व्यक्ति का नाम बताए, नरहा, एक नर होना चाहिए, अभी जीवित होना चाहिए और इस प्रकार के गुण होना चाहिए, 16 गुणों को वर्णन किया, इसके पास ये 16 के 16 गुण हो और अभी जीवित हो, इस संसार में हो और नर हो। ये वाल्मीकि का प्रश्न था किससे, नारद जी से। नारद जी ने उसको उत्तर दिया, गुणों को वर्णन करते, भगवान राम से गुणों को वर्णन करते, उसको उच्चारण किया। तो भगवान रामचंद्र के गुणों का चर्चा हम कल करेंगे, लेकिन उसके पहले रामायण का पहला श्लोक मेरे साथ उच्चारण करने के लिए प्रयास कीजिए। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिप्रप्रच्छ द्वारदं परिप्रप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुङ्गवम् तपस्वाध्याय निरतम् तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिप्रप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुङ्गवम् रामायण का पहला श्लोक है। कम से कम पहला श्लोक तो याद हो जाए। इस भारत देश में जन्म लिए हूँ, रामायण को हम इतना मानने वाले हैं, पहला श्लोक को आपके पास नोट्स है, याद तो कीजिए, कम से कम पढ़ के तो आइए। तो कल हम बाकी सब चर्चा करेंगे, यानी इस श्लोक से लेके भगवान का गुणों का बहुत विस्तार से चर्चा हम कल करने का प्रयास करेंगे। कल आपको कहा था रामायण का जब यज्ञ होता है, वर्णन होता है, चर्चा होती है, तो सारे जगत के कल्याण के लिए होता है, मंगल करने के लिए होता है। इसलिए स्वस्ति और मंगलकारी शब्दों के द्वारा, श्लोकों के द्वारा समाप्त करेंगे। स्वस्ति प्रजेभ्य परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनीं तेषु यं क्षोभरितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया पुत्रा अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः अदना सदना सन्तु जीवन्तु सारदां सतां चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसान् महापातकनाशनम् शृण्वं रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स्वयादि ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्ववेद नमस्कृते वित्रासन्ते नासे संभवत्ता ते भूतु मङ्गलम् यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनताख्यल्पते पुरा अदितिर्मङ्गलं प्रादाता ते भूतु मङ्गलम् हीन् विक्रमान् रक्षन्तो विष्णोरमति तेजसा अमित तेजसा यदासीन्मङ्गलं रामत्ता ते भूतु मङ्गलम् यतवा सागरद्वीपा वेदलोके दिशश्चये मङ्गलानि महाभावो दिशन्तु तव सर्वदा आयेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीरामाय नमः।